एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसने, सच कहूं तो, पीढ़ियों को राह दिखाई है। नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच।
हाँ, और नाम सुनकर कई बार लगता है कि भाई ये तो बस अमीर बनने के टिप्स होंगे, पर ऐसा है नहीं, है ना?
बिल्कुल नहीं। ये किताब असल में सफलता का एक पूरा फलसफा है, एक दर्शन है, और ये जिंदगी के किसी भी हिस्से में काम आ सकता है।
सही कहा। और ये भी सोचने वाली बात है कि ये आई कब थी? 1937 में, मतलब अमेरिका में भयानक मंदी चल रही थी।
हाँ, उस निराशा के माहौल में लिखी गई बातें आज भी, देखिए, लगभग 90 साल हो गए, आज भी उतनी ही जरूरी क्यों लगती हैं?
शायद इसलिए कि ये उन सवालों को छूती हैं जो हमेशा से अहम रहे हैं कि भाई क्यों कुछ लोग इतनी कामयाबी पाते हैं और ज्यादातर पीछे रह जाते हैं।
क्या ये बस किस्मत है या कोई तरीका है, कोई सिद्धांत है इसके पीछे?
हिल का तो यही मानना था कि हाँ, सिद्धांत हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इन्हें ढूंढने और लिखने में।
तो फिर लेखक को जानना तो बनता है। नेपोलियन हिल 1883 से 1970 तक अपने जमाने के सबसे जाने माने सेल्फ हेल्प लेखकों में से एक थे वो।
और उनकी अपनी कहानी भी कोई सीधी सपाट नहीं थी, काफी उतार चढ़ाव देखे उन्होंने।
हाँ, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, शायद सबसे बड़ा, 1908 में।
अच्छा, क्या हुआ था?
वो एक युवा पत्रकार थे और उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला, वही स्टील किंग, उस समय के सबसे अमीर लोगों में से एक।
अरे वाह, कार्नेगी का।
हाँ, और कार्नेगी हिल से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने हिल के सामने एक चैलेंज रख दिया।
चैलेंज? कैसा चैलेंज?
कार्नेगी ने कहा, क्या तुम अगले 20 साल लगाकर अमेरिका के 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों का अध्ययन कर सकते हो?
हाँ।
मतलब हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रूजवेल्ट जैसे लोग।
500 लोग और 20 साल?
हाँ, और ये पता लगाना कि उनकी सफलता के पीछे कॉमन सिद्धांत क्या है, उनको लिखना एक तरह से।
और कार्नेगी ने इसके लिए पैसे दिए होंगे शुरुआत में?
यही तो बात है। कार्नेगी ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ परिचय करवा दूंगा, कोई एडवांस पेमेंट नहीं। हिल ने ये चुनौती मान ली।
कमाल है, बिना पैसों के इतना बड़ा काम।
हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी के 2 दशक इस रिसर्च में झोंक दिए। तो उनकी बातों में वजन सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने इतने लोगों से बात की,
बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने खुद गरीबी और नाकामी देखी थी। वो सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहे थे, उन्होंने इन चीजों को जिया था।
बिल्कुल, ये रिसर्च, उनका अपना तजुर्बा और इतने बड़े बड़े लोगों का साथ, ये सब मिलकर उन्हें इस विषय पर लिखने का अधिकार देता है।
सही बात है। तो अब आते हैं किताब के दिल पर। इसका जो मेन आइडिया है वो क्या है?
सबसे बुनियादी बात जो हिल कहते हैं वो है, विचार चीजें हैं। थॉट्स आर थिंग्स।
विचार चीजें हैं मतलब?
मतलब हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, उनमें एक असली ताकत है। और जब किसी विचार के साथ बहुत गहरी, तीव्र इच्छा जुड़ जाए
और अटूट विश्वास हो
और उस पर लगातार काम किया जाए दृढ़ता के साथ, तो वो विचार हकीकत बन सकता है, पैसे में या किसी और चीज में।
तो ये सिर्फ पैसा कमाने का फॉर्मूला नहीं है, ये तो कुछ हासिल करने का, उपलब्धि पाने का एक पूरा नजरिया है।
हाँ, किताब हमें एक सफर पर ले जाती है। पहले अंदरूनी बदलाव, अपनी सोच बदलना, इच्छा जगाना, विश्वास पैदा करना, अपने अवचेतन मन की ताकत समझना,
और फिर बाहरी कदम जैसे कि खास तरह का ज्ञान हासिल करना, योजना बनाना, फैसले लेना, टिके रहना।
और हिल के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था।
हाँ, ये बात भी जरूरी है।
उनके लिए सफलता थी मन की शांति, अच्छे रिश्ते, डर से आजादी, मतलब अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना।
तो ये जो 13 सिद्धांत है किताब में, वो सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं।
नहीं, वो एक पूरी मेंटल टूल किट है एक बेहतर, संतुलित और कामयाब जिंदगी जीने के लिए।
तो चलें इन 13 सिद्धांतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से करें?
किताब के शुरू में ही एक जबरदस्त कहानी है एडविन सी बार्न्स की।
हाँ, मैंने पढ़ी है, कमाल भी कहानी है।
एक आम सा लड़का जिसके मन में बस एक धुन सवार थी कि मुझे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है।
पैसे नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं थी,
कुछ नहीं था, बस एक मालगाड़ी पकड़ी और पहुंच गए एडिसन के ऑफिस, कहा मुझे आपके साथ काम करना है।
और एडिसन ने रख लिया?
हाँ, पर छोटे मोटे काम दिए। बार्न्स सालों तक लगे रहे लेकिन वो पार्टनर बनने का सपना नहीं छोड़ा।
और फिर?
फिर एडिसन ने एक नई मशीन बनाई, एडिफोन। कोई बेचने को तैयार नहीं था। बार्न्स ने कहा, मैं बेचूंगा, और उन्होंने उसे इतनी कामयाबी से बेचा
कि एडिसन ने उन्हें पार्टनर बना लिया, है ना?
बिल्कुल, ये कहानी दिखाती है कि अगर लक्ष्य एकदम साफ हो और उसे पाने की जिद हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती।
और यहीं से आता है पहला सिद्धांत, इच्छा, डिजायर, सभी उपलब्धियों का स्टार्टिंग पॉइंट।
लेकिन हिल यहाँ सिर्फ चाहने की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं प्रबल इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर।
हाँ, इसमें फर्क है। सिर्फ चाहना तो ऐसा हो सकता है कि काश मेरे पास पैसे होते।
हाँ, पैसिव सा, लेकिन प्रबल इच्छा एक आग है, एक जुनून जो आपके हर काम, हर सोच पर हावी हो जाए।
और हिल इसे सिर्फ महसूस करने को नहीं कहते, उन्होंने बाकायदा 6 स्टेप्स दिए हैं इसे पक्का करने के लिए।
हाँ, वो 6 कदम। पहला, तय करो कि ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए, एकदम सटीक रकम।
दूसरा, ये सोचो कि इस पैसे के बदले में तुम क्या दोगे, अपना वक्त, कोई स्किल, आइडिया।
तीसरा, एक पक्की तारीख तय करो जब तक ये पैसा चाहिए, डेडलाइन।
चौथा, एक प्लान बनाओ और तुरंत काम शुरू कर दो, भले ही पूरी तरह तैयार ना महसूस कर रहे हो।
पांचवा, ये चारों बातें साफ साफ लिख लो कागज पर।
और छठा, और शायद सबसे जरूरी, इस लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार पढ़ो, सुबह उठते ही, रात सोने से पहले, और पढ़ते वक्त महसूस करो कि वो पैसा तुम्हारे पास आ चुका है।
सुनने में ये स्टेप्स आसान लग सकते हैं, पर ये साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है।
हाँ, ये धुंधली सी इच्छा को एक ठोस, नापने लायक लक्ष्य में बदल देते हैं और उसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देते हैं।
और यहीं से जुड़ता है दूसरा सिद्धांत, विश्वास। इच्छा कितनी भी तेज हो, अगर यकीन ही नहीं कि ये पूरी होगी तो कैसे होगी।
सही बात, हिल तो विश्वास को मन का केमिस्ट कहते हैं।
हाँ, कि यही वो चीज है जो हमारे विचारों को एनर्जी देती है, उन्हें हकीकत बनाने का प्रोसेस शुरू करती है, और ये डर का तोड़ है।
और अच्छी बात ये है कि हिल कहते हैं विश्वास पैदा किया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है।
कैसे?
ऑटो सजेशन से,
यानी
स्व सुझाव। और यही आता है तीसरा सिद्धांत, ऑटो सजेशन।
ये क्या चीज है ऑटो सजेशन?
ये हमारे कॉन्शियस यानी जागरूक मन और सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन के बीच का ब्रिज है। मतलब अपने आप को बार बार कोई बात कहना, कोई विश्वास दोहराना।
अच्छा, जैसे वो 6 स्टेप वाला बयान रोज पढ़ना।
बिल्कुल, वो ऑटो सजेशन ही है, हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है ना, कि सबकॉन्शियस माइंड वो तर्क नहीं करता।
हाँ, वो सही गलत, अच्छा बुरा नहीं देखता। आप जो बीज उसमें डालेंगे वो उसे उड़ा देगा।
इसलिए जरूरी है कि हम जानबूझकर उसमें पॉजिटिव, विश्वास वाले विचार डालें, शक और डर वाले नहीं।
अच्छा, तो इच्छा हो गई, विश्वास हो गया, ऑटो सजेशन से उसे पक्का कर लिया, पर अब कुछ करने के लिए ज्ञान भी तो चाहिए।
बिल्कुल, और यही आता है चौथा सिद्धांत, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज नॉलेज।
हिल यहाँ फर्क करते हैं जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज नॉलेज में।
हाँ, वो कहते हैं सिर्फ बहुत कुछ जानना काफी नहीं है, पैसा कमाने या कामयाब होने के लिए आपको किसी एक खास फील्ड में गहरा ज्ञान चाहिए, जिसे आप किसी सर्विस या प्रोडक्ट के तौर पर दे सकें।
और दिलचस्प बात यह है कि हिल कहते हैं जरूरी नहीं ये सारा ज्ञान आपके ही पास हो।
हाँ, हेनरी फोर्ड का उदाहरण याद है, शायद उन्हें इंजीनियरिंग की बहुत डीप नॉलेज नहीं थी,
लेकिन उन्हें पता था कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जिनके पास वो नॉलेज है और उन्हें कैसे साथ लाना है।
बिल्कुल, यहीं पर मास्टरमाइंड का आइडिया भी जुड़ता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ज्ञान जरूरी है, पर उसे ऑर्गेनाइज करके इस्तेमाल करना और भी जरूरी है।
और ज्ञान को प्लान में बदलने के लिए क्या चाहिए?
कल्पना।
हाँ, पांचवां सिद्धांत, कल्पना, इमेजिनेशन।
हिल इसे मन की वर्कशॉप कहते हैं।
वो 2 तरह की कल्पना बताते हैं, एक सिंथेटिक,
जो पुराने आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बनाती है,
ज्यादातर चीजें ऐसे ही बनती हैं,
और दूसरी है क्रिएटिव कल्पना, जहां से एकदम नए ओरिजिनल आइडियाज आते हैं, जैसे कोई अचानक से आया हुआ ख्याल, कोई प्रेरणा।
हिल मानते हैं कि ये क्रिएटिव कल्पना हमें किसी बड़ी शक्ति, जिसे वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे जोड़ती है।
तो कामयाब लोग इन दोनों तरह की कल्पनाओं का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं को ठोस प्लान में बदलते हैं। और यहीं हम पहुंचते हैं 6 सिद्धांत पर, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। इच्छा और कल्पना तब तक हवा में है जब तक एक पक्का काम करने लायक प्लान न बने।
प्लान बनाना शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। आपको तय करना है कि आप अपने लक्ष्य के बदले क्या देंगे, कैसे देंगे।
और यहीं फिर से मास्टरमाइंड की बात आती है, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना जो आपकी मदद कर सकें, जिनके पास वो ज्ञान या अनुभव हो जो शायद आपके पास ना हो।
हिल ने एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, प्लान फेल हो सकते हैं और होते भी हैं।
हाँ, लेकिन टेम्पररी हार का मतलब परमानेंट फेलियर नहीं है। अगर पहला प्लान काम ना करे तो दूसरा बनाओ, दूसरा ना करे तो तीसरा।
तब तक जब तक कोई प्लान काम कर ना जाए, यहाँ पर टिके रहने की मतलब दृढ़ता की जरूरत पड़ती है।
लेकिन प्लान पर काम करने से पहले एक और चीज।
क्या?
सातवां सिद्धांत, निर्णय, यानी टालम टोल को हराना।
ओ हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। हिल ने अपने रिसर्च में पाया था कि कामयाब लोग फटाफट फैसले लेते हैं,
और अगर बदलते भी है तो बहुत सोच समझ कर, धीरे धीरे।
जबकि जो लोग नाकाम रहते हैं वो फैसले लेने में देर लगाते हैं,
और फिर दूसरों की बातों में आकर जल्दी जल्दी बदल देते हैं।
वो अमेरिका की आजादी का घोषणा पत्र साइन करने वालों का उदाहरण देते हैं, 56 लोग जिन्हें पता था कि मौत की सजा मिल सकती है,
पर उन्होंने एक पक्का फैसला लिया और उस पर टिके हैं। हिल कहते हैं कि जल्दी और पक्के फैसले लेना लीडरशिप की निशानी है, टालमा टोल डर से आती है।
अच्छा, तो प्लान बन गया, फैसला ले लिया, अब क्या?
आप चाहिए सबसे मुश्किल चीजों में से एक, आठवां सिद्धांत, दृढ़ता।
उफ, टिके रहना, लगे रहना, मुश्किलें आए, लोग बुरा कहें, फेल भी हो जाएं, पर लगे रहना।
हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग कामयाबी से बस एक कदम दूर होते हैं जब वो हार मान लेते हैं।
दृढ़ता असल में विल पावर का एक्शन में दिखना है। इसे कैसे बढ़ाएं? हिल ने इसके भी चार स्टेप्स बताए हैं।
पहला, एक पक्का लक्ष्य जिसे पाने की जबरदस्त इच्छा हो।
दूसरा, एक अक्का प्लान जिस पर लगातार काम करना है।
तीसरा, अपने दिमाग को नेगेटिव असर से बचाना, दूसरों की निराशाजनक बातें, अपनी शक, इन सब से।
और चौथा, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना जो आपको हिम्मत दे, आपको ट्रैक पर रखे।
आपने ये मास्टरमाइंड शब्द कई बार इस्तेमाल किया, ये है नौवा सिद्धांत, है ना? मास्टरमाइंड की शक्ति, क्या मतलब है इसका?
हिल इसे डिफाइन करते हैं, एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच ज्ञान और कोशिशों का तालमेल सद्भावना के साथ।
अच्छा, तो जब दो या ज्यादा दिमाग एक साथ एक मकसद के लिए अच्छी भावना से काम करते हैं
तो एक तीसरी अनदेखी ताकत पैदा होती है। हिल इसे तीसरा मन कहते हैं, और ये तीसरा मन अलग अलग दिमागों की कुल ताकत से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है।
एंड्रू कार्नेगी ने तो कहा था कि उनकी सारी दौलत उनके मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से थी जिसमें करीब 50 लोग थे।
हाँ, आज के जमाने में हम इसे शायद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एडवाइजरी बोर्ड या मेंटरशिप ग्रुप कह सकते हैं। आइडिया वही है, अकेले सब कुछ करना मुश्किल है, सही लोगों का साथ आपकी तरक्की को कई गुना बढ़ा सकता है।
अब आते हैं दसवें सिद्धांत पर। ये थोड़ा पेचीदा है और कई बार लोग इसे गलत समझ लेते हैं। यौन ऊर्जा रूपांतरण का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन।
हाँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। हिल का मानना था कि सेक्स ड्राइव इंसान की सबसे पावरफुल भावनाओं और एनर्जी में से एक है,
और रूपांतरण यानी ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है एनर्जी को एक रूप से दूसरे में बदलना।
तो हिल का कहना था कि जब इस जबरदस्त सेक्सुअल एनर्जी को सिर्फ फिजिकल लेवल से हटाकर किसी क्रिएटिव काम में लगाया जाता है, जैसे आर्ट, बिजनेस, कोई खोज,
तो ये इंसान में जबरदस्त क्रिएटिविटी, जोश और दृढ़ता भर सकती है। ये जुनून को प्रोडक्टिविटी में बदलने जैसा है।
ये इच्छा को दबाने की बात नहीं है, बल्कि उसकी ताकत को ऊंचे लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करने की बात है। हिल ने पाया कि इतिहास के कई महान लोगों में ये काबिलियत थी।
ठीक है, अब 11वां सिद्धांत हमें फिर से मन की दुनिया में ले जाता है, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड।
हाँ, हमने ऑटो सजेशन के वक्त इसकी बात की थी। हिल इसकी तुलना एक उपजाऊ जमीन से करते हैं।
आप उसमें जो भी बीज डालेंगे, मतलब जो भी विचार डालेंगे, वो उगेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा।
हम सीधे सीधे सबकॉन्शियस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसमें क्या बो रहे हैं।
हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस मन भावनाओं से बहुत प्रभावित होता है, पॉजिटिव भावनाएं जैसे विश्वास, प्यार, उम्मीद, जोश,
ये अच्छे विचारों को सबकॉन्शियस तक पहुँचाती है, और नेगेटिव भावनाएं डर, जलन, नफरत, बदला,
ये बुरे विचारों को। इसलिए अपनी भावनाओं पर ध्यान देना और पॉजिटिव नजरिया रखना बहुत जरूरी है।
फिर आता है 12वां सिद्धांत, मस्तिष्क, द ब्रेन। हिल दिमाग को एक तरह का रेडियो स्टेशन मानते हैं,
जो विचारों को भेजता भी है और रिसीव भी करता है।
हाँ, जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, वैसे ही थॉट वेव्स होती हैं। हमारा दिमाग ना सिर्फ अपने विचार बनाता है, बल्कि दूसरों के दिमाग से, और हिल के अनुसार अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से भी विचार पकड़ सकता है,
खासकर तब जब हम क्रिएटिव कल्पना या छठी इंद्री का इस्तेमाल करते हैं।
और यहीं हम आ गए आखिरी 13वें सिद्धांत पर, छठी इंद्रिय।
हिल इसे अपने फलसफे का शिखर मानते हैं, कहते हैं कि इसे तभी समझा जा सकता है जब बाकी 12 पर पकड़ बन जाए।
ये है क्या आखिर?
ये असल में इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान का सबसे एडवांस्ड रूप है, क्रिएटिव कल्पना की पराकाष्ठा। ये वो काबिलियत है जब आपको अचानक कोई हल सूझ जाए, कोई आइडिया आ जाए,
या आने वाले किसी मौके या खतरे का अंदाजा हो जाए। हिल इसे अनंत प्रज्ञा से डायरेक्ट कनेक्शन का जरिया मानते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग की वो हालत है जहां आप आम तर्क और सेंस से आगे जाकर चीजें समझ पाते हैं।
किताब के आखिर में हिल उन 6 डरों की बात करते हैं, 6 भूत।
हाँ, गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर।
हिल कहते हैं कि ये डर सिर्फ हमारे मन की उपज है, और इन 13 सिद्धांतों पर चलकर, खासकर निर्णय, दृढ़ता और विश्वास के जरिए इन पर काबू पाया जा सकता है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत से कुछ मेन थीम्स या संदेश निकाले तो क्या होंगे? मेरे लिए तो सबसे पहला है विचारों की रचनात्मक शक्ति, ये यकीन कि हमारी सोच हमारी दुनिया बना सकती है।
हाँ बिल्कुल। दूसरा, एक पक्के बड़े लक्ष्य का होना। बिना किसी साफ मंजिल के बस इच्छाएं रखने से बात नहीं बनती, आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है।
तीसरा, मास्टरमाइंड की ताकत। अकेले चलना मुश्किल है, सही लोगों का साथ, वो तालमेल हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। भारत में आजकल हम इसे स्टार्टअप्स में टीम वर्क में देखते हैं।
चौथा, ये समझना कि असफलता बस एक अस्थायी रुकावट है, अंत नहीं। ये सोच दृढ़ता के लिए बहुत जरूरी है। कोई एग्जाम हो, बिजनेस हो, कुछ भी, हार ना मानना अहम है।
और पांचवा, डर पर काबू पाना, खासकर आलोचना का डर। आज सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी बढ़ गया है ना, ये हमें कई बार कुछ नया करने से रोक देता है। इन मानसिक दीवारों को तोड़ना जरूरी है।
इस किताब में कुछ कमाल के कोट्स भी हैं, यादगार लाइनें। सबसे मशहूर शायद यही है, मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो प्राप्त कर सकता है।
कितना पावरफुल है ये, मतलब हमारी सीमाएं हमारी सोच और विश्वास तय करते हैं।
हाँ, यहाँ सोचना और विश्वास करना दोनों जरूरी हैं। सिर्फ सोचने से नहीं, उस पर अटूट यकीन भी चाहिए।
एक और है, इच्छा सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है। आशा नहीं, सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि एक तेज धड़कती हुई इच्छा जो बाकी सब पर हावी हो जाए। ये फिर से उस बर्निंग डिजायर पर जोर देता है।
बिल्कुल, और ये वाला तो सीधा और सच्चा लगता है। हार मानने वाला कभी जीतता नहीं, और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। दृढ़ता का निचोड़ है ये।
हाँ, अक्सर जीत और हार में बस थोड़ा और टिके रहने का ही फर्क होता है।
और एक आखिरी बहुत प्रैक्टिकल बात, राय दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। हर कोई सलाह देने को तैयार बैठा है, खासकर नेगेटिव।
सही बात है, ये याद दिलाता है कि अपने लक्ष्य पर फोकस रखो और दूसरों की, खासकर बिना मांगी सलाहों से, आसानी से मत भटको।
तो इन सब बातों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स।
कई तरीके हैं। पहला, लक्ष्य तय करने के लिए हिल की वो 6 स्टेप वाली विधि इस्तेमाल करें। चाहे करियर का लक्ष्य हो, हेल्थ का, या कुछ सीखने का, लिखकर रोज पढ़ें।
दूसरा, पॉजिटिव सोच बनाना। ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करें, रोज खुद से अच्छी बातें कहें, मतलब अफर्मेशंस, और नेगेटिव ख्यालों को पहचान कर उन्हें चैलेंज करें।
तीसरा, नेटवर्किंग यानी अपना मास्टरमाइंड बनाना। ये कोई फॉर्मल ग्रुप भी हो सकता है, या बस कुछ भरोसेमंद दोस्त या साथी जिनसे आप अपने आइडियाज और मुश्किलों पर बात कर सकें।
चौथा, बेहतर फैसले लेना। जानकारी लें पर फिर फैसला करें, टाल मटोल से बचें।
और पांचवा, अपने डरों को पहचानना और उनका सामना करना। सोचें कि उन 6 भूतों में से कौन आपको सबसे ज्यादा रोकता है, फिर उसे तर्क और विश्वास से काटें।
जैसे कोई अपना ब्लॉग शुरू करना चाहता है पर डरता है कि लोग क्या कहेंगे,
तो वो छोटे से शुरू कर सकता है, भरोसेमंद लोगों से फीडबैक ले सकता है, और ये समझ सकता है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को कितना ज्यादा प्रभावित करती है। ये आइडिया कि हम अपनी सोच को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, ये बहुत ताकत देता है। और मेरे लिए दृढ़ता का सबक, कामयाबी एक रात में नहीं मिलती, मुश्किलें तो आएंगी ही, पर टिके रहना, सीखते रहना, यही कुंजी है। ये किताब सच में सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है।
हाँ, ये तो अपने मन पर काबू पाकर एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जिंदगी जीने का तरीका है। जरा सोचिए, अगर कोई इन 13 में से सिर्फ एक सिद्धांत, मान लीजिए सिर्फ दृढ़ता को ही पूरी तरह अपनी जिंदगी में उतार ले, तो कितना कुछ बदल सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।